समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा। करिश्मा, एवरी डे वी कीप मेकिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आर लाइफ, बाइंग न्यू फोन्स, न्यू फैशनेबल क्लोथ्स, गोइंग ऑन हॉलीडेज टू एक्सोटिक प्लेसेस एंड मेनी सच थिंग्स, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट सोली डिपेंडेंट ऑन मटेरियल पोजेशंस। इट इज फंडामेंटली ड्रिवन बाय नॉन मटेरियल फैक्टर्स लाइक रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड ऑफकोर्स पीस। While money provides comfort, long-term fulfillment stems from security, freedom, respect and love, which material goods cannot replace. And last but not the least, in any way, we can say good health is the key to all happiness.
Bilkul.
So we can say quality of your life depends on the quality of your health, encompassing physical, mental and social well-being rather than just the absence of disease. Good health enables independence, functionality and the ability to enjoy life's possibilities and positions. We will discuss more on this today, being the World Health Day, but right now let's update you all with news making headlines at this hour. Political leaders make last ditch efforts to woo voters in Assam, Keralam and Puducherry as campaigning to end this evening.
भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल में पार्टी के सत्ता में आने पर सभी घुसपैठियों को वापस भेजने का वादा।
ओवर 27 लाख वोटर्स फाउंड इनएलिजिबल अंडर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन वेस्ट बंगाल। गवर्नमेंट सेज सप्लाई ऑफ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड पीएनजी रिमेन्स नॉर्मल अक्रॉस कंट्री।
केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए प्रतिदिन 5 किलोग्राम के मुक्त व्यापार एलपीजी सिलेंडर का आवंटन दोगुना किया।
सुप्रीम कोर्ट बिगिन्स हियरिंग ऑन विमेन्स एंट्री इन रिलीजियस प्लेसेस इंक्लूडिंग सबरीमला।
ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर इसराइल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, राजस्थान रॉयल्स टू टेक ऑन मुंबई इंडियंस इन गुवाहाटी दिस इवनिंग। And Karishma, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Health Day. Today is a very special day observed across the globe, World Health Day. Celebrated every year on the 7th of April, this day reminds us of the importance of good health and well-being for everyone, everywhere. And this year's theme is both powerful and timely. Together for Health, Stand with Science. It emphasizes how working together and trusting science can help build a healthier future. And under this theme, the World Health Organization has launched a year-long campaign.
बिल्कुल, और इसका मकसद वैज्ञानिक सहयोग की जबरदस्त ताकत को उजागर करना है जो न सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि जानवरों, पौधों और हमारे पूरे ग्रह की रक्षा में मददगार है। यहीं पर वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट सामने आता है। यह एक ऐसा नजरिया है जो इस बात को मानता है कि इंसानों, जानवरों और पर्यावरण की सेहत आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। दुनिया भर में फैलने वाली महामारियों से निपटने से लेकर जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों को सुलझाने तक विज्ञान एक अहम भूमिका निभाता है।
But it's not just about discoveries, it's also about countries and communities working together to turn knowledge into action. And today is a reminder that staying healthy isn't just an individual effort, it's a collective responsibility. So let's take a moment to thank healthcare workers, scientists and everyone contributing to a healthier world. And of course, लेट्स कमिट टू मेकिंग हेल्थियर चॉइसेस इन आवर डेली लाइव्स।
और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जो दूसरों की सेवा में अथक रूप से समर्पित है और एक स्वस्थ ग्रह के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने एक स्वस्थ समाज के निर्माण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और उनके प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए मिलकर काम करते रहें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस का इतिहास क्या है।
Yes, the history of World Health Day is closely linked with the establishment of the World Health Organization. In 1948, the first health assembly met and suggested the establishment of a special day to focus on global health concerns. The first World Health Day was celebrated on 7th of April 1950. It was established to make sure that the world's most pressing health concerns got the attention and action they deserved. The WHO was the key force behind this initiative in collaboration with the United Nations.
और हजारों की संख्या में संगठन हमेशा से ही इस वैश्विक पहल का हिस्सा रहे हैं। अतीत में रेड क्रॉस, यूनिसेफ और हर क्षेत्र की विभिन्न सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रालय इन अभियानों को फैलाने में अहम भूमिका निभाते थे। आज यह सूची तेजी से बढ़ी है और इसमें वैश्विक गैर लाभकारी संगठन, चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मानवीय समूह और लाभ कमाने वाले स्वास्थ्य सेवा संगठन शामिल हैं। ये सभी मिलकर WHO इस वर्ष की थीम को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं।
And today we live in a world where health information is all around us. Just type in a question and you will get thousands of answers in a matter of seconds. The trouble is, not all of them are true. The internet has made it easier than ever for myths, misconceptions and scaremongering tips to go viral. From magic cures to extreme diets and self-diagnosis fads, it's easy to get overwhelmed or worse, confused.
और बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन कुछ ऐसा मिल जाता है जो उनके लक्षणों से मिलता जुलता लगता है। लेकिन अब दिक्कत यह होती है कि लक्षण अक्सर धोखा दे सकते हैं। जो चीज ऊपर से देखने में बेजान लगती है वो कभी कभी किसी ज्यादा गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है और इसका सही निदान या इलाज केवल एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ ही कर सकता है। ठीक इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस इतना महत्वपूर्ण है।
Right, and let's talk about the mental health now. Mental health is essential because it dictates how we think, feel, behave, and cope with life's challenges. It affects our physical health, relationships, productivity, and overall quality of life. Maintaining good mental health helps build resilience to handle stress and enables us to realize our full potential. Anchoring the 2026 campaign are two major global moments. The International One Health Summit from 5th to 7th of April, which is hosted by France under the French G7 presidency, and the inaugural Global Forum of WHO collaborating centers from 7th to 9th of April, gathering scientific institutions from over 80 countries.
और ये सभी कार्यक्रम मिलकर संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी के इर्द गिर्द अब तक सबसे बड़ा वैज्ञानिक नेटवर्क बनाते हैं जो इस बात पर बल देता है कि विज्ञान आधारित साझेदारियां किस तरह से सभी के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आइए समझते हैं कि GLP-1 दवाएं किस तरह से काम करती हैं।
And if we talk about the GLP-1 drugs, which are medications developed to treat both type 2 diabetes and obesity by correcting hormonal imbalance, stimulating insulin release and suppressing excess glucagon to bring blood sugar back under control, the drugs regulate blood sugar and appetite and are also used to treat obesity. Essentially, they slow down the gastric emptying, increasing their feeling of fullness. This decreases patients' appetites and thereby leads to their weight loss.
और हाल ही में भारतीय बाजार में GLP-1 दवाएं कई प्रकार से पेश की गई और रिटेल फार्मेसी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, थोक विक्रेताओं और वेलनेस क्लिनिकों के जरिए इनकी ऑन डिमांड उपलब्धता को लेकर भी अब चिंताएं सामने आई हैं। इनकी अनाधिकृत बिक्री, बिना देखरेख के इस्तेमाल और अन्य गलत कामों को रोकने के लिए भारत के ड्रग कंट्रोलर ने अपनी नियामक निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन दवाओं का सेवन सख्त चिकित्सीय देखरेख में नहीं किया जाए तो इनसे गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं।
Yes, so these GLP-1 drugs are prescription medications used to treat type 2 diabetes and obesity, but carry serious side effects and must only be taken under the supervision of a qualified medical specialist. In India, GLP-1 drugs can only be prescribed by endocrinologists, internal medicine specialists and cardiologists. They cannot be purchased over the counter. Drug Controller General of India, in collaboration with state drug controllers, has intensified regulatory surveillance, conducting inspections and warning that non-compliance will result in license cancellation, fines and legal action.
और GLP-1 दवाएं टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज में एक बड़ी मेडिकल सफलता है, लेकिन इनके कुछ जोखिम भी हैं। इन दवाओं के कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इनके लक्षण जैसे कि आम लक्षणों में उल्टी भी शामिल है। इसे लेकर पैंक्रियाटाइटिस, किडनी में चोट और आंतों में रुकावट जैसी गंभीर बीमारियां तक इसमें शामिल हैं। इन जोखिमों को देखते हुए यह जरूरी है कि GLP-1 दवाएं केवल किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही ली जाए। भारत के रेगुलेटरी अधिकारियों ने बिना देखरेख के इस्तेमाल और सप्लाई चेन में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। मरीजों और आम जनता को यह जोरदार सलाह दी जाती है कि वे इन दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले किसी योग्य मेडिकल विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें और ये दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही सही और रेगुलेटेड चैनलों के जरिए ही खरीदें।
And in conclusion, we can say World Health Day acts as a catalyst for tackling health disparities and strengthening resilience against pandemics and hazards. And the day urges individuals to prioritize preventive measures like balanced nutrition, mental health awareness, and physical activity to prevent lifestyle diseases. As we wrap up today's special segment, remember that a good health is the foundation of a happy and successful life.
और श्रोताओं, आज उठाए गए छोटे छोटे कदम भी कल को ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं, और आपके लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी। तो आइए हम खुद से वादा करें कि हम अपनी आदतों के प्रति ज्यादा जागरूक रहेंगे और सेहत को अपनी रोज की प्राथमिकता बनाएंगे, क्योंकि जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हम अपने भविष्य का भी ख्याल रखते हैं। और सेहतमंद रहें, सुरक्षित रहें, और एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं।
As part of our series People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to Ms. S.G. Sushilamma, a social worker who will be honoured with Padma Shri. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today in the evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on News on EIR app and News on EIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। और सबसे पहले बात सिक्किम की करेंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने उत्तर सिक्किम में तारामचू ब्रिज क्षेत्र में हुए भूस्खलन के कारण पर्यटकों की सुरक्षा और वहां की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
राज्यपाल माथुर कल 3 दिवसीय उत्तर सिक्किम यात्रा से लौटते समय रास्ते में ही तारामचू ब्रिज क्षेत्र में हुए भूस्खलन की जानकारी प्राप्त हुए। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए उसी समय मंगन जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि तुरंत घटनास्थल पर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेकर सूचना दे। आज जिला कलेक्टर मंगन अनंत जैन ने राज्यपाल माथुर को सारी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारी बर्फबारी के कारण वैकल्पिक रास्ता डोंकियाला लाचुंग मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और पर्यटकों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है। राज्यपाल माथुर को ये भी जानकारी मिली कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के पास स्थानीय लोगों की मदद से एक अस्थायी पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे वहाँ फंसे हुए पर्यटकों को शीघ्र निकाला जा सके और स्थानीय निवासियों तक आवश्यक राहत सामग्री पहुँचाया जा सके। जिला प्रशासन ने बताया कि सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित हो रहा है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। राज्यपाल माथुर ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मंगन प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों में शीघ्रता से तेजी लाने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पर्यटकों को सुरक्षित रूप में वहां से निकालना तथा स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, इस प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यपाल महोदय ने प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। राज्यपाल माथुर की हाल ही में उत्तर सिक्किम यात्रा के दौरान उन्होंने क्षेत्र की विकास कार्यों, सड़क अवसंरचना और पर्यटन सुविधाओं का जायजा लिया था। इस यात्रा के ठीक बाद आई इस आपदा पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। माननीय राज्यपाल माथुर ने यह आशा जताई है कि प्रशासन की सक्रियता से स्थिति जल्द सामान्य हो सके और पर्यटक सुरक्षित रूप में अपने गंतव्य तक पहुँच सके। आकाशवाणी समाचार गैंगटॉक से परिक्रमा के लिए मोइनाक चैटर्जी।
And now from Gangtok to Leh, where the much-awaited Apricot Blossom Festival 2026 in the Union Territory of Ladakh will celebrate Ladakh's spring heritage and sustainable tourism. The festival marks the beginning of spring in the land of high passes and attracts a good number of tourists locally and internationally.
The Department of Tourism Ladakh is pleased to announce the much-awaited Apricot Blossom Festival 2026, a vibrant celebration of nature, culture and community to be held across various apricot-growing villages in Ladakh during the spring season. Marking the arrival of spring in the high-altitude desert, the festival showcases the breathtaking bloom of apricot orchards that transform the stark landscape into a canvas of white and pink hues. Scheduled across multiple locations from 8 to 16 April 2026, including Leh, Kargil and surrounding villages, the festival invites visitors from across the globe to witness this unique seasonal spectacle. The iconic Apricot Blossom Festival aims to promote sustainable tourism while highlighting the rich cultural heritage and traditional lifestyles of Ladakh. Visitors will have the opportunity to experience authentic Ladakhi hospitality, local cuisine, handicrafts and folk performances. The festival also serves as a platform to support local communities and promote eco-friendly tourism practices. Tourists are encouraged to plan their visits in advance and participate responsibly, respecting local customs and the environment. While talking to Parikrama, Assistant Director Tourism, Padma Angmo said, the Apricot Blossom Festival, which started in 2021 in Ladakh, has been attracting increasing tourist footfall every year. Padma said, the festival was inspired by the Cherry Blossom Festival and aims to promote tourism during April. This year's event will also feature traditional agricultural practices, heritage walks, and displays of local artifacts. Ladakh has emerged as a key exporter of premium organic Halman apricot targeting international markets such as Dubai, Saudi Arabia, Qatar and Kuwait. For Parikrama, this is Rigzinang Mo from Leh Ladakh.
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा कीनू उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए सिरसा स्थित वीटा मिल्क प्लांट परिसर में लगभग 26 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक कीनू जूस प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जा रहा है।
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि यह परियोजना 33 वर्ष की रियायत अवधि के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित की जाएगी, जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा। हरियाणा डेयरी द्वारा संयंत्र स्थापित करने के लिए लगभग 3 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि निजी भागीदार संयंत्र एवं मशीनरी, आवश्यक सिविल ढांचा स्थापित करेगा तथा संयंत्र का संचालन करेगा। उन्होंने कहा कि वक्तता पड़ने पर परियोजना को वायबिलिटी गैप फंड की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारिता संघ के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने बताया कि हरियाणा में प्रतिवर्ष लगभग 4,40,000 मीट्रिक टन किन्नू का उत्पादन होता है, जिसमें अकेले सिरसा जिले का योगदान लगभग 55% है। प्रस्तावित संयंत्र में प्रतिवर्ष लगभग 9,000 मीट्रिक टन किन्नू तथा 12,600 मीट्रिक टन अन्य फलों का उच्च गुणवत्ता वाला पैकेट जूस तैयार किया जाएगा। विशेष रूप से किन्नू उत्पादन का लगभग 25% भाग, जो प्रायः बी ग्रेड फल होता है और पहले कम कीमत पर बिकता था, अब मूल्य संवर्धन के माध्यम से उपयोग में लाया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर किसानों की आय बढ़ेगी। इस पहल की एक प्रमुख विशेषता इसका किसान केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसके तहत कच्चे माल की खरीद प्रदेश के किसानों से की जाएगी। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
And now a piece of information for our listeners. The Ministry of Culture has invited filmmakers and creative enthusiasts from across the country for Vande Mataram Frames National Filmmaking Contest. To celebrate the spirit of Vande Mataram through their unique storytelling, the contest provides a platform for participants to showcase their creativity, innovation and cinematic skills while expressing pride in the nation. The ministry said the initiative aims to promote artistic expression and inspire a deeper connection with the cultural and patriotic significance of the iconic song. The competition is open to individuals and teams, offering a nationwide stage for recognition. Participants can submit their film entries through the designated platform Vande Mataram 150.in. The selected entries will be recognized at the national level, providing an opportunity for emerging talent to gain visibility and appreciation.
और श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान में और वहां जानते हैं वहां की हलचल. और सबसे पहले बात क्रिकेट की. आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा. यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.
एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज मेड अ रिमार्केबल मार्क एट द नेशनल लेवल इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2025-26, सिक्योरिंग अ गोल्ड मेडल अलॉन्ग विद अ मेडालियन ऑफ एक्सलेंस, ब्रिंगिंग प्राइड टू द यूनियन टेरिटरी. दीक्षा, a student of National Institute of Fashion Technology Srinagar, clinched the gold medal in fashion technology, earning the prestigious opportunity to represent India at the upcoming World Skills Competition scheduled to be held in Shanghai in China. And talking about the business news, benchmark domestic equity indices climbed around 0.7% after a choppy trading session today, extending their winning streak for a fourth straight session. Sensex rose 510 points to close at 74,617, while Nifty added 155 points to settle at 23,124. And in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 gained 0.2%, while the small-cap 100 closed marginally lower.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
We remember Assamese freedom fighter Joya Thausen, who was martyred on the 7th of April 1944. She formed the revolutionary Dimasa Army to fight against British imperialism.
Thausen was born in 1925 in North Kachar Hill, Assam. She belonged to the Dimasa tribe and openly criticized the British government's war fund collection from the Dimasa inhabited area during World War II. At the mere age of 19 years, she established the Revolutionary Dimasa Army, a party of armed activists, in 1944.
Thausen was inspired by the Rani Jhansi Regiment of the Indian National Army. When the INA column was about to reach Kohima, she moved with her 54 associates towards Kohima, hoping to join it in the struggle against the Allied forces. Unfortunately, this Dimasa armed force was intercepted and ambushed near Kohima by the British-led Allied force on the 7th of April 1944. All the 54 members of the party, including Joya, were killed on the spot before their dream of joining the INA came true. We salute the great martyrs.
We also remember Indian innovator Shankar Abaji Bhise, who died on the 7th of April 1935.
Born on the 29th of April 1867 in Mumbai, Bhise had an aptitude for science since his childhood. At the age of 14, he constructed a small apparatus at his home which made coal gas. He began a scientific club in Bombay and started publishing a science magazine in Marathi called Vivid Kala Prakash, through which he conveyed the importance of science to the common people. In 1893, he accepted an offer to go to England to show his inventions with support from Sayaji Rao Gaikwad of Baroda. He also drew the interests of Dadabhai Naroji and G.K. Gokhale.
Bhise's most influential invention was a typesetting machine called the spasotype and later the pisotype, which could insert blocks at 1500 to 2000 characters per hour for use in printing. The Hindu Missionary Society and several other Indian nationalist groups promoted Bhise and his talents. He was invited to several meetings where he was honored, including the Indian National Trade Congress at Madras on the 26th of December 1908. He established an Indian society in London along with his wife Sushila Bai and others like Govind Kukre and Govind Ray.
Until his death, Bhise kept alive the anti-colonial spirit. In London, he joined Dada Bhai Naroji in demonstrations and meetings. In New York, he championed Gandhiji's ideas and hosted visiting Indian nationalists. From India to Britain and America, Bhise merged progressive politics with science. We salute the great Indian.
We also remember martyrs Sheikh Roshan and Badar Singh, who were sent to Andaman's cellular jail, Kalapani, on the 7th of March, 1859, for participating in the First War of Indian Independence in 1857. They joined hands with the independence activists and fought against the British. They also offered financial help to other people and inspired them to destroy British properties and overthrow their rule. They were caught by the company troops and accused of rebellion against the British. They were sentenced to imprisonment for life. Sheikh Roshan and Badar Singh died in Andaman Islands in imprisonment. We salute the great sons of soil.
Moving on, we also pay tribute to Acharya Janaki Vallabh Shastri, often remembered as a Shikhar Purush literary practice, with tributes often noting his role as a guardian of literary and social values. He was a distinguished Hindi poet, novelist and literata, honoured as a peak figure in Hindi literature. He was a prolific writer with over 60 valuable books across various genres, including poetry, drama and novels. Known for his significant contributions to Hindi literature, his works are considered highly valuable. And his contribution to education beyond writing is that he was a teacher and a guide to many.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं नित्य के महान गुरु केलुचरण महापात्र को. कहते हैं कि नित्य सिर्फ कदमों की हरकत नहीं होता, ये भावनाओं की भाषा होता है. और इस भाषा को दुनिया तक पहुंचाने वाले महान कलाकार थे केलुचरण महापात्र. केलुचरण महापात्र ने पारंपरिक नृत्य को नई पहचान दी और इसे देश विदेश में लोकप्रिय बना दिया. वे सिर्फ एक नर्तक ही नहीं बल्कि सच्चे कला प्रेमी थे जिन्होंने पूरी जिंदगी नृत्य को समर्पित कर दिया. उनके अद्भुत योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया.
And today we also pay tribute to Venkatarama Pandit Krishnamurti, a one-time violinist and jailed freedom fighter, was Guru Dutt's regular cameraman on his movies. He provided some of Indian cinema's most notable images in a starkly contrasted black and white. He also shot India's first CinemaScope film, Kagaz Ke Phool. For his contribution to film industry, particularly Indian film industry, he was awarded the IIFA Lifetime Achievement Award. And in 2010, he was honored with the Dada Saheb Phalke Award for his contributions to Indian cinema. He worked as an assistant to cinematographer V. Ratra in the year 1951 film Bazi, which was Guru Dutt's first as a director. And of course, apart from Guru Dutt team, till the latter's death in 1964, he also worked for Kamal Amrohi on his masterpiece like Pakiza and Razia Sultan. And of course, he had also given, directed, which was directed by Shyam Benegal. He was a cinematographer for the television serial Bharat Ek Khoj.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं महान सितार वादक पंडित रविशंकर को, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे सितारे थे जिन्होंने भारत की संगीत परंपरा को दुनिया भर में पहचान दिलाई. उनका सितार वादन इतना मधुर और प्रभावशाली होता था कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे. उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी भारतीय संगीत का नाम रोशन किया. पश्चिमी देशों में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. उनके योगदान के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया और यह उनके अद्भुत संगीत सफर की एक बड़ी उपलब्धि है.
And to add a few more things, he recomposed the famous song Sare Jahan Se Acha at the age of 25, and he also served as the music director of All India Radio in New Delhi from the year 1949 to 1956. And today we are celebrating his 104th birth anniversary of this sitar player and composer, Pandit Ravi Shankar.
Mm-hmm.
And today we fondly call that actor the Jumbik Jack of Indian cinema. It is his birthday today. We wish Jitendra a very happy birthday.
बिल्कुल तो सफेद जूते तेज म्यूजिक और एक ऐसा डांस जिसे देखकर पैर अपने आप थिरकने लगते थे. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जितेंद्र की, जिनके गाने आज भी बहुत फेमस हैं. तो और भी गानों की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने दिए और इन गानों में उनका डांस इतना फ्रेश लगता था कि लंबे करियर तक उनके गानों की बात होती रही. और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए मुझे और अनुजा को.
नमस्कार, नमस्कार।